नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ आज द्वीप के प्राचीन घोगला बीच पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा, एशियाई क्रिकेट परिषद के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए नहीं आया है। और भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ आज द्वीप के प्राचीन घोगला बीच पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश भी जारी करेंगे कुछ देर में, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अभी कार्यक्रमों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। पहले सुनते हैं करिश्मा की रिपोर्ट और फिर आगे बात करते हैं।
इस पहल का उद्देश्य देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। पिछले साल बीच गेम्स 2024 का आयोजन इसी वेन्यू पे किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश विजेता बनकर सामने आया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स एक टीम चैंपियनशिप के फॉर्मेट में संचालित होगा, जिसमें व्यक्तिगत खिलाड़ियों या टीमों द्वारा जीते गए पदक उनके राज्य या यूनियन टेरिटरी की ओवरऑल मेडल टैली में योगदान देंगे। खेलों के समापन पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाएगा। देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीट इन खेलों में पदक के लिए स्पर्धाएं करेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में बीच सॉकर, पेनकैक सिलाट, सेपक टकरा, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और ओपन वाटर स्विमिंग में पदकों के लिए स्पर्धाएं होंगी। वहीं मलखम्ब और रस्साकस्सी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
मनोज जी, पहले बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और अब दीव में रस्साकसी की बारी है।
जी हाँ, बिल्कुल। और रस्साकसी की तो एक इवेंट भी है, और जो आपने एक प्रतीक के तौर पर इसका जिक्र किया, देखिए बहुत अच्छी बात है। ये खेल मंत्रालय का या भारत सरकार का जो ये की जो पहल है ग्रास रूट लेवल पर उठाने की, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आप ये देखिए कि अब जो ऐसी इवेंट्स जिसमें भारत की विशेष तौर पर कोई खास पहचान नहीं है इन खेलों में, वहां पर मेडल जीतना। आप देखिए, एक इंडोनेशिया की मार्शल आर्ट है पेनकॉक सिलेक्ट, उसको भी शामिल किया गया है। ये वो इवेंट है जिसमें एशियन गेम में 16 गोल्ड मेडल दांव पर थे, जिसमें 14 गोल्ड मेडल जो है वो इंडोनेशिया ने जीते थे। तो इसके अलावा आप मलखम्ब देखिए, मलखम्ब 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में इसको एक नुमाइशी खेल के तौर पर शामिल किया गया। बीच कबड्डी और बीच वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को हम देखते रह जाते हैं वो पदक जीतते हुए। अब आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो पदक हमारे गले में भी, हमारे खिलाड़ियों के गले में भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और ओपन वाटर स्विमिंग, स्विमर लंबी जो रेस होती है 10-10 किलोमीटर की, उसमें प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आने वाले समय में और ग्रास रूट लेवल पर कई प्रतिभाएं आपको दिखेंगी।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अवसर है ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो इन तरह के खेलों से आते हैं। आयोजन स्थल की अगर बात की जाए, हम देखते हैं यहाँ पे दीव को मौका दिया गया इतने बड़े खेलों के आयोजन के लिए। इसके पहले बिहार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई यूथ गेम्स के लिए। छोटे शहरों में खेलों का बुनियादी ढांचा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
देखिए, जितने भी नेशनल गेम्स हुए हैं उसके जरिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कहिए ढांचागत सुविधाएं जो है वो मुहैया हुई है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे रांची हो या अन्य सेंटर्स हो, आपका मुंबई और पुणे हो। पुणे के अंदर वो सुविधाएं नहीं थी, आज आप वहां देखेंगे तो एक विश्व स्तर की सुविधाएं वहां मुहैया हो गई हैं। तो अब ये जो अभी यूथ गेम्स हुए, फिर यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, फिर उसके बाद जो ये बीच इवेंट्स जो हैं, जहां पर हम बिल्कुल जिसे कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया था पिछले वर्षों में, आत्मसमर्पण जिसे आप कहते हैं, अब हम इसमें भी हमारा कंपटीशन में हम लोग सक्रिय रूप से भागीदारी हमारी बढ़ेगी और हम पदकों की उम्मीद कर सकेंगे आने वाले वर्षों में।
जी बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में बड़े स्तर पे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों के स्तर पे यही खिलाड़ी निकल करके भारत के लिए पदक लेकर के आए। बात करते हैं क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 14वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। आज का मैच लखनऊ सातवें नंबर पर है अंक तालिका में और हैदराबाद आठवें स्थान पर है।
जी हाँ बिल्कुल, और मैं तो कहूंगा कि हैदराबाद तो बाहर हो गया है लेकिन लखनऊ की उम्मीदें भी बाकी टीमों पर भी निर्भर है। तीनों मैच उसको जीतने पड़ेंगे, तीनों मैच जीतने के अलावा ये भी दुआ करनी होगी कि उसका नेट रन रेट भी सबसे अच्छा हो, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि मुंबई बहुत ऊपर चल रहा है, क्योंकि जगह एक ही खाली है और उसमें दावेदार तीन तीन है, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट। और उसके अलावा एक और भी बात है कि आपको ये भी दुआ करनी होगी कि जो मुंबई है और दिल्ली है वो अपने दोनों मैच ना जीतें। अगर कोई दोनों मैच जीत गई दोनों में से कोई भी टीम, तब भी लखनऊ बाहर हो जाएगा, तब भी उसके लिए कोई चांस नहीं रहेगा। इफ एंड बट्स का खेल है, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से मिचेल मार्श जो है एक गैप के बाद आए हैं और बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने आज की है, जिस तरह से पावर प्ले में जो रन बटोरे 69 रन इन्होंने बटोरे हैं और अब तक इस साल का जो सर्वाधिक स्कोर था उनका पावर प्ले का मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसकी बराबरी कर ली है, और मार्करम के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की इन्होंने पहली बार इस आईपीएल में, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और वहीं अच्छी बात है कि टू वे ट्रैफिक दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं था जैसे आपने कल मैच में देखा होगा कि एक तरफ से रन बन रहे थे पावर प्ले में और शुभमन गिल अपने आप को रोके हुए थे, लेकिन यहां टू वे ट्रैफिक था, दोनों पावर प्ले में सक्रियता के साथ बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे।
जी मनोज जी, आपने कल के मुकाबलों की बात की, हम भी कल के मुकाबलों की बात करते हैं। कल रात कल आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए, जहां गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 रन से हरा दिया, वहीं दिन में खेले गए एक मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
साई सुदर्शन और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 200 रन के लक्ष्य को बड़ी आसानी से बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। साई सुदर्शन ने 61 गेंद पर शानदार 108 रन की और कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंद पर 93 रन की नाबाद पारी खेली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात के दोनों सलामी बल्लेबाजों की इस अटूट दोहरी शतकीय साझेदारी ने अपनी टीम को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचाकर टीम का प्लेऑफ का टिकट पक्का कर दिया। साई सुदर्शन को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने ओपनिंग करने आए केएल राहुल की 65 गेंद पर 112 रन की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 199 रन बनाए। गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान और साई सुदर्शन ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले एक अन्य मैच में जयपुर में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। 220 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से ध्रुव जुरेल ने 53 और यशस्वी जायसवाल ने 50 रन की पारी खेली। पंजाब के लिए हरप्रीत बरार ने 3 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। पंजाब के लिए नेहल वडेरा ने 70 और शशांक सिंह ने 69 रन बनाए। हरप्रीत बरार को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल में गुजरात के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने भी प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया है और अब चौथी क्वालिफायर टीम बनने के लिए कांटे की टक्कर जारी है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
गाड़ी की 4 सीटों में से 3 सीटें तो रिजर्व हो चुकी हैं और चौथी के लिए 3 टीमें अभी भी दावेदारी पेश कर रही हैं। कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में?
कड़ा मुकाबला है जी, अब क्योंकि मैं तो मेरी नजर तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला होना है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि वो बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि कौन सी टीम थ्रू करेगी, आगे बढ़ेगी, और जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं उनमें भी होड़ लगी हुई है पहले और दूसरे स्थान पर पहुंचने की, क्योंकि वहां अगर आप एक मैच हार भी जाते हैं प्लेऑफ में तो आपको एक मौका और मिलता है जो टॉप की 2 टीमें होती हैं। लेकिन बाकी जैसा आपने ठीक कहा कि जगह एक है और दावेदार अनेक हैं, 3 दावेदार हैं, तो मुकाबला बड़ा रोमांचक होगा। और रही बात इस मैच की जो अभी जिसका हमने जिक्र किया, बहुत अच्छा साइन है ये कि इंग्लैंड दौरे से पहले साई सुदर्शन का चलना, शुभमन गिल का चलना, केएल राहुल का चलना, ये बहुत अच्छा संकेत है। और जिस तरह से उन्होंने एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ से हमें सेंचुरी देखने को मिली, ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हमें मिला है साई सुदर्शन के तौर पर, मोस्ट कंसिस्टेंट है, पिछली बार 500 प्लस बनाए, इस बार 600 प्लस बनाए। वहीं शुभमन गिल की मेच्योरिटी नजर आई कि जहां उन्होंने पहले ओवर में छक्का लगाया तो अगला छक्का उन्होंने जो है अगली बाउंड्री 9वें ओवर में लगाई।
बिल्कुल, बहुत सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली कल शुभमन गिल की तरफ से। उन्होंने शुरुआत में बहुत धीरज दिखाया और आखिरी में रफ्तार पकड़ी अपनी उसी बल्लेबाजी की। सबसे खास बात यह भी रही कि उम्मीद थी कि मोमेंटम टूटेगा, लेकिन जहां से गुजरात ने सत्र को खत्म किया था वापस वहीं से शुरू कर रही है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने आज कहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई भी खबर या रिपोर्ट पूरी तरीके से अटकलें या काल्पनिक हैं। ऐसी खबर चल रही थी कि भारत ने सीसी को ऐसा कहा है कि वो महिला इमर्जिंग एशिया कप और पुरुष एशिया कप में भागीदारी नहीं करेगा। बात करते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम ने एक रोमांचक शूटआउट मुकाबले में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। भारतीय कप्तान सिंगम यूम समी ने भारत के लिए दूसरे ही मिनट में गोल किया। बांग्लादेश की टीम ने 61वें मिनट में गोल कर मुकाबले में बराबरी की। फिर उसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में गया, वहां भी कप्तान ने गोल किया और भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच अपने नाम किया। मैच ही नहीं, पूरा का पूरा सीजन सेमीफाइनल तक भारत के डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया, कोई गोल नहीं होने दिया। और कल का जो खेल रहा,
बहुत बढ़िया खेल रहा जी। और बस आपने पूरे टूर्नामेंट में जो अब एक गोल खाया है जो फाइनल में, और उससे पहले हमने कोई गोल नहीं खाया। स्कोरिंग पावर हमारी बहुत जबरदस्त थी, कई अच्छे हमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसमें मिले। एक गोल स्कोरर जो थे सिंगमाता शमी, और उसके अलावा 5 गोल करने वाले टूर्नामेंट के सर्वाधिक वो भी भारत की तरफ से थे, डैनी मैतेई लेशराम, और बेस्ट गोलकीपर हमारे थे, और उसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भारत को मिला, तो जो अरवाश ने जीता। तो कुल मिलाकर आज जो है ना, हर तरफ भारत का डोमिनेशन देखने को मिला है। और कुछ मैं तो कहूंगा कि पूरा डोमिनेशन के साथ साथ अच्छा गेंद को अपने पास रखना, बॉल पोजीशन बहुत गजब का था। अगर ये शुरू में मौके ना चुके होते तो ये अंतर जो है आपको ये पेनल्टी शूटआउट की शायद नौबत ही ना आती।
जी बिल्कुल। अब बात करते हैं टेनिस में। टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। 22 वर्षीय स्पेन के खिलाड़ी अल्काराज ने इटली के जैनिक सिनर को 7-6, 6-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में अल्काराज ने पहले सेट में धैर्य बनाए रखते हुए पहले 2 सेट पॉइंट बचाए। दूसरे सेट में काफी हावी खेल उन्होंने दिखाया, काफी अग्रेसिव खेल दिखाया, और लगातार 26 मैचों की जो जीत का सिलसिला था उसको तोड़ते हुए उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उनके करियर का ये 19वां टूर लेवल ट्रॉफी है और 7वां ATP मास्टर्स खिताब है।
तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने जितने अच्छे आंकड़े दिए, और मैं तो कहूंगा कि दोनों के बीच ATP टूर जो अगर आप देखते हैं तो 11 मुकाबलों में से 7 में जीत अल्काराज के नाम रही है। और एक ऐसा खिलाड़ी जो फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुका हो, विंबलडन 2 बार जीत चुका हो, US ओपन 1 बार जीत चुका हो, और उनका जो चिर प्रतिद्वंदी है इस वक्त जैनिक सिनर, उनको वो उनके साथ मुकाबले उनके बहुत ही रोमांचक होते हैं। और हमने इनका US ओपन क्वार्टर फाइनल देखा था जब 5 सेटर चला था वो मुकाबला, एक मैच पॉइंट भी बचाया था अल्काराज ने, और एक मैच पॉइंट बचाने के बाद वो जीते थे उस मुकाबले को।
बिल्कुल, टेनिस की जगत को एक नया सितारा मिलने जा रहा है कहा जा सकता है। और अंत में बात करते हैं टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की, जहां भारत की मणिका बत्रा और मानव ठक्कर ने सिंगल्स मुकाबलों में शानदार शुरुआत की है। 22वीं सीड मणिका ने नाइजीरिया की फातिमा बेलो को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। मणिका बत्रा शुरुआत में थोड़ी सी टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि लैसे बाहर दिख रही थी, वापस
देखो जी अब उनके पास इतना तजुर्बा हो गया है कि अब वो शुरुआती अगर गलतियां करती हैं तो उस पर बहुत जल्दी निजात पा लेती हैं। यही उनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है जो उन्हें वाकई इस वक्त जितने भी टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं उनसे बिल्कुल अलग साबित करती है।
और वहीं मानव ठक्कर ने न्यूजीलैंड के टिमोथी चोई को 4-1 से मात दी। उन्होंने भी काफी मतलब बड़े मार्जिन से हराया है। अगर मिक्स डबल्स की बात की जाए तो मनुष शाह और दिया चितारे की जोड़ी ने अल्जीरिया की जोड़ी को 3-0 से हराया। तो काफी मतलब बड़े अंतर देखने को मिल रहे हैं सभी मैचों में, और भारतीय खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे?
देखिए निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि टेबल टेनिस में अब वो दौर नहीं रहा कि हम लंबे समय तक सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जाते थे, अब हम जीतने के लिए जाते हैं। और क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ना भी हमारे खिलाड़ियों को आ गया है, अब बखूबी उसके लिए आधुनिकतम सुविधाओं को पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, कैंप्स लग रहे हैं रेगुलर। तो अब निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आगे आने वाले समय में टेबल टेनिस का भविष्य काफी उज्ज्वल है।
जी बिल्कुल। और इसी प्रतियोगिता में हरमीत देसाई और यशस्विनी ने भी 2-0 की बढ़त के साथ फ्रांसीसी जोड़ी को 3-2 से हराया। और श्रोताओं अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।